नमस्कार, सतीश झा शो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम लोग अर्थव्यवस्था पर। महंगाई की मार सबको दिखती है, सरकार को नहीं दिखती। सरकार कह रही है कि महंगाई का असर, महंगाई बढ़ी है लेकिन इसका असर अमीरों पर ज़्यादा हुआ है, गरीबों पर कम। ये एक नया अर्थशास्त्र है जो हमें पढ़ाया जाता नहीं था कहीं पर। तो देखते हैं ये ऐसा कैसे हुआ। तो आपने देखा होगा कि कल ही या कल परसों की बात है, हमें मालूम पड़ा कि जो थोक भाव का जो सूचक है वो आज करीब 40 साल की सबसे ऊंचाई पर पहुंच चुका है। जो खुदरा भाव का सूचक है वो भी करीब 8-9% पर चल रहा है। यानी कि महंगाई जो है करीब, आप मान लीजिए जितने 100 रुपया जो खरीदता था पिछले साल, आज वो खरीदने के लिए 110 रुपये चाहिए। ज़्यादातर उसमें गुंजाइश हुई है पेट्रोल में, जो बढ़ाए गए थे करीब 30 रुपये एक्साइज ड्यूटी में, कुछ उससे बढ़ी है। ये तो खैर तकनीकी बातें हैं। मोटी बात यह है कि सरकारी नीतियों ने यह महंगाई बढ़ाई है। सरकारी खजाने से पहला काम होता है कि पैसे उन्होंने जो दे दिए अमीरों के, माफ़ कर दिए कई 1,00,000 करोड़ रुपये के आसपास, वो उनको कहीं से भरपाई करनी थी। उनके पास पैसे नहीं हैं। GST कहते हैं कि सबसे बहुत ज़्यादा वसूली हुई है, करीब 20-21 लाख करोड़ साल का GST वसूल कर रहे हैं, लेकिन सरकारी बजट जो है 40 लाख करोड़ के आसपास का है। तो बाकी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। और स्थिति यह है कि सरकार के पास जितने पैसे चाहिए थे उतने नहीं हैं। कुछ वजह कोरोना थी, 2 साल तक जो मुश्किलें हुई, पिछले साल इकॉनमी में कई एस्टिमेट्स आए हैं, उनमें से कुछ कहते हैं कि 8% की कमी हुई, कुछ कहते हैं 20-22% कमी हुई। और आप जानते हैं कि कई सालों से लग रहा है, एक आरोप लग रहा है सरकार पर कि उन्होंने, जब वो उनके परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती तो वो आंकड़ों से खेल करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो अभी स्थिति यह है कि उन्होंने अमीरों का, जिन्होंने 1,00,000 करोड़ रुपये बैंकिंग सिस्टम से कर्जे लिए थे और नहीं दे पाए, उनको माफ़ी दी गई। और जो सरकारी बजट पर जो घाटा हुआ, एक तो पहली बात घाटा बहुत बढ़ गया है, कर्जा बढ़ गया है देश का, और जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने पेट्रोलियम पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। राज्य सरकारें करती हैं शराब में, उनके पास वही एक चारा है, और केंद्र सरकार करती है पेट्रोल पे। सरकारें भी करती हैं पेट्रोल पर क्योंकि इसमें वो डायरेक्टली कर सकती हैं बिना GST का रास्ता अपनाए हुए। उसके अलावा ज़्यादा सारा जो टैक्सेशन है वो GST से चल रहा है। तो अमीरों का कर्जा माफ़ हुआ, सरकार के पास डेफिसिट हुआ, सरकार ने टैक्स लगाया पेट्रोल के ऊपर, दाम बढ़ाए, उससे जो है तमाम जो क्षेत्र हैं, चाहे वो जितने भी उत्पादकता वाले क्षेत्र हैं उनमें दाम बढ़े, और सब मिला के स्थिति ऐसी है कि महंगाई 40 साल में सबसे ऊंची जगह पे पहुंच चुकी है। एक तरह से हमारा एक बहुत बड़ा बुखार से ऐसे आ गया है हमारे व्यवस्था को। दूसरा पकड़ोगे आप, जैसे कि डॉक्टर देखता है तो वो देखता है टेम्परेचर क्या है, आपको बुखार है कि नहीं है, आपकी नाड़ी कैसे चल रही है, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है। उस तरह से देखें तो दूसरी बात यह है कि रुपये का हाल भाव क्या है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में करीब, मान लीजिए आज की तारीख में 5,000 बिलियन डॉलर का जो है जो हो रहा है आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, उसमें जो घाटा होता है, जो ट्रेड डेफिसिट, यानी कि आयात ज़्यादा होता है निर्यात कम होता है, और उसके बीच का जो डेफिसिट है उससे तय होता है कि हमारी मुद्रा, विदेशी मुद्रा कितनी है। तो वैसे तो डंके की चोट पे कहते हैं कि हमारी बहुत मुद्रा हमारे पास है, 1990-91 के मुकाबले में बहुत है, लेकिन उसमें तय करते हैं कितने दिन तक हमका खर्चा हम चला सकते हैं, जो हमारे अकाउंट में पैसे हैं उसके हिसाब से। तो वो देखिए, तो अभी स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन अगर हमारी ज़रूरतें इस तरह बढ़ गई कि जो फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, उसकी वजह यूक्रेन है, तो दो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि बाहरी चीज़ें हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। कोविड, हम 2 साल उससे गुजर चुके हैं, और यूक्रेन, तो ये तो बाहरी चीज़ें हुई, लेकिन उसके साथ जो व्यवस्था का जो संबंध प्रबंधन है उस पर जो मुश्किलें आई हैं उसको लेकर के हमने जो تمام جو این پی اے معاف کیے ہیں اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے ارتھ ویوستھا پر. تو ابھی آج کی استھتی یہ ہے کہ 15% کے آس پاس جو تھوک بھاؤ انڈیکس بڑھ گیا, 10 کے آس پاس کھدرا بھاؤ انڈیکس بڑھ گیا, اور روپے کا دام جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے جب یہ سر بھاجپا سرکار آئی تھی 2014 میں اس کے مقابلے مان لیجئے قریب 25% کا فرق پڑا ہے. یعنی کہ آج روپیہ 25% کمزور ہے قریب 8 سال پہلے کے مقابلے. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ریزرو بینک نے کیا کیا, انہوں نے کچھ 40 بیسس پوائنٹ بڑھا دیا اپنا انٹرسٹ بیاج جو ہے, جس سے کہ مہنگائی پہ تھوڑا سا اثر پڑے گا. پھر بھی اس دوران ابھی کچھ پڑا نہیں اس کا اثر, شاید معلوم پڑے گا 1-2 مہینے کے بعد. لیکن بہت بڑی بات یہ دیکھتا ہوں میں کہ جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو ایک ماحول سا بن رہا ہے کہ ہم بھی شری لنکا کے راستے جا رہے ہیں. ابھی مان لیجئے کہ کوئی بھی ایسٹیمیٹ لیں گے بھارت کی اکانومی کا پچھلے سال کے بارے میں, تو 8 سے 20% کے بیچ میں جو اس کی ڈھلان آ گئی تھی, یعنی کہ ارتھ ویوستھا سکڑ گئی تھی, اس کے نام پر اگر آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں شری لنکا کی ارتھ ویوستھا کل 4% سکڑی تھی. لیکن جو کپربند تھا اس کو لے کر کے وہاں ابھی جو بوال مچا ہوا ہے, پردھان منتری بدلے گئے ہیں, ان کے گھر جلا دیے گئے, لوگ پریشان ہیں, کسی کے پاس پیٹرول نہیں ہے, بھارت سرکار نے ان کو $1 بلین قرض بھی دیا ہے, لیکن ان کی استھتی اس طرح ابھی بھی اتنی کچھ ڈھاواں ڈول سی ہے کہ پتہ نہیں لگ رہا ان کا کیا ہوگا. بھارت میں ایسا نہ ہو اس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس ارتھ شاستری بھی تھے جو سمجھتے تھے ارتھ ویوستھا کو. بھارت اکیلی ایسی ارتھ ویوستھا تھی جو کہ وکاسشیل دیشوں میں کہیے جن کی آمدنی $5,000 پرتی ویکتی سے کم ہے, ان دیشوں کی بات کریں تو پچھلے 75 سالوں میں سبھی نے بھارت کے ارتھ شاستروں کی پرشنسا کی تھی, اور کہ سب نے یہ کہا تھا کہ جو اس کی مشکلیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بھارت نے اپنا آرتھک پربندھن کافی اچھا کیا تھا. میرے حساب سے وہ کافی اچھا مدھیور کے لیے ہوگا اور امیروں کے لیے ہوگا, غریبوں کے حساب سے اچھا نہیں تھا. لیکن غریبوں نے مان لیا ہے کہ بھگوان نے ہمیں ایسے جنم دیا ہے, وہ زیادہ حلہ نہیں کرتے, ان کی سنوائی نہیں ہوتی, ان کی آواز نہیں ہوتی کہیں, تو ان کی بات اگر آپ چھوڑ دیں تو یہ بات صحیح ہے کہ بھارت کے ارتھ شاستریوں نے اچھا پربندھن کیا تھا. راجنیتک ڈھنگ سے دیکھیں تو اگر ہمارے یہاں آندولن نہیں ہو رہے ہیں, لوگ سڑکوں پہ نہیں آتے ہیں, نوکری کے لیے حلہ نہیں کرتے ہیں, ہنسا نہیں بڑھتی ہے, تو مانا جائے گا کہ ہماری ویوستھا ٹھیک چل رہی ہے. لیکن آج کل کے ماحول میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی, تو لوگ کہتے ہیں جو ہم سے باتیں کرتے ہیں جو رپورٹیں بھیجتے ہیں کہ ہنسا بڑھ رہی ہے. خیر مجھے لگتا ہے کہ بھی جو اب تک رپورٹس آ رہی ہیں انفارمل ہوں چاہے فارمل ہوں, جو دکھتی ہیں جو نہیں دکھتی ہیں پہنچتی ہیں آپ کے پاس, جب ارتھ ویوستھا ڈاؤن ڈول ہوتی ہے تو ہنسا کی سمبھاونائیں بڑھ جاتی ہیں. امریکہ میں اس کی اور وجہ ہیں, لیکن ہر ایسے دیش میں جہاں وہ جو وکاسشیل ہیں وہاں ہنسا کا رشتہ سیدھے ارتھ ویوستھا سے بھی جڑتا ہے. لیکن اگر ہم پوری ارتھ ویوستھا کو ایک طرح سے دیکھیں, ہم نے ابھی بات کی مہنگائی بڑھ رہی ہے, روپے کے دام کم ہو رہے ہیں, بیاج کی دریں بڑھ رہی ہیں, آیات نریات کے بیچ کی دوری بڑھ رہی ہے, سبھی جو رپورٹس آ رہی ہیں ان سب میں لگتا ہے کہ جو ابھی آپ نے سینسیکس کو دیکھا, سینسیکس تو اوپر چڑھتا گرتا اترتا رہتا ہے لیکن اگر آپ اس کو ہم اکانومی سے جوڑ کے زیادہ نہیں دیکھتے, اکانومی کی ایک لیئر سے اس کا زیادہ رشتہ ہوتا ہے. تو ابھی مان لیجئے سینسیکس 50,000 سے کچھ اوپر ابھی بھی ہے, پھر بھی اس میں تھوڑا سا کافی کمی آئی ہے, 10% کے آس پاس کمی آئی پچھلے کچھ دنوں میں, اس سے یہ لگتا ہے کہ جو امیدیں ہیں تھوڑا کہیں کم ہو گئی ہیں. پھر بھی سب ہی جانتے ہیں کہ دو ایسے ہمارے ادیوگ پریوار ہیں جن کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا, دیش کی ویوستھا 8% نیچے ہو جائے, 20% نیچے ہو جائے, ان کی ترقی 200% ہو جاتی ہے, یا اس میں سے ایک کی ہو جاتی ہے دوسرے کی بھی 40-50% ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری کی ساری جو نیتیاں بن رہی ہیں ان میں ان کا فائدہ پہلے دیکھا جاتا ہے, وہ چاہے کسان کی نیتیاں ہوں فارم کے بارے میں, یا چاہے ادیوگ کی نیتیاں ہوں, یا ویٹ ایکسپورٹ کی کب شروع کیا جائے کب روکا جائے. تو یعنی کہ جو ہماری نیتیاں ہیں اس میں لوگوں کا خیال کم ہے. लोगों के लिए सबसे बड़ी नीति यह है कि उनको हम मुफ्त पे गेहूं बांट देंगे, हर 3 महीने बढ़ाते रहेंगे उनको और एक्स्ट्रा गेहूं देते रहिए। लेकिन गेहूं का भंडार खत्म हो रहा है और बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूक्रेन के आने से गेहूं 25% उसमें कमी हो गई है। यूक्रेन सबसे बड़ा सप्लायर है गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो स्थिति यह है कि फर्टिलाइजर के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। जो चिंता की बात यह है कि जो भी अभी पेट्रोल के दाम बढ़ने से, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ने जो कि यूक्रेन की लड़ाई से हो रहे हैं, और कुछ जो भी भंडारण में जो कमी हो गई है इसलिए कि हमने कोरोना काल में 2 साल से कई 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया है, इन सब कारणों से गेहूं पर बहुत मुश्किल आने वाली है। दाम बढ़ेंगे और जो लोग गेहूं खाते हैं उनको चावल की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन फूड सिक्योरिटी के नाम पे, अगर चीन में 2 साल की फूड सिक्योरिटी है तो हमारे यहाँ अभी जो है शायद 6 महीने की भी नहीं है। इन सब बातों को सोचना पड़ेगा। लेकिन वो तो सिक्योरिटी की बात है, वो जो खाना खाते हैं उनको, उनके अगर आमदनी में 10% कमी हो गई इसलिए कि महंगाई बढ़ गई है तो उनको अपना खाना 10% कम करना पड़ता है। और ये ऐसी आबादी जो है हमारी करीब मान लीजिए आधे से ज़्यादा है। जितने लोग मनरेगा के आसपास थे या जो जिनको हम अभी दे रहे हैं 80 करोड़, 140 में से 80 करोड़, ये ऐसी आबादी है, अगर दाम बढ़ गए तो उन पर सीधा असर पड़ता है उनके खाने पे, उनके जो उनका जो शारीरिक जो उनका माहौल है, स्वास्थ्य का, शरीर को ठीक रखने का, भोजन ठीक से करने का। तो ये जो है बहुत बड़ी बड़ी चैलेंजेस हमारे सामने आ रही हैं। हमारी नीतियाँ कुछ इस तरह बन रही हैं, उन्होंने उनका ख्याल नहीं किया था, इसके अलावा कि उनको किस तरह से चुप रखा जाए, शांत रखा जाए, तो ये अलग बात हो गई। तो हमारी अर्थव्यवस्था की काफ़ी हमेशा सराहना होती थी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों के बीच में। हमारे जो अर्थशास्त्री थे जो विकासशील देश हैं उनमें वो सबसे आगे थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ज़्यादा समझदार थे, उन परिपक्वता थी, उन्होंने विकासशील देशों की तमाम साइकिल्स देख रखी थी। और 1947 से 2014 तक जो एक हमारे पास एक्सपीरियंस बेस था वो बहुत ही एक तरह से मान लीजिए कि सब किसी भी देश से कहीं ज़्यादा मजबूत सा था। लेकिन 8 साल में जो जितनी भी नीतियाँ बनी हैं वो कोई चाहता है इसलिए बनती है, कोई एक व्यक्ति एक घराना ऐसा चाहता है उसमें बनती है, वो दिखता है उसमें। तो महंगाई की शुरुआत कहाँ से हो रही है, जैसे मैंने पहले शायद कहा कि शुरुआत हो रही है कि हमने NPA को ख़त्म कर दिया तमाम उद्योग धंधों के लिए, कई लाख करोड़ उसके माफ़ कर दिए। हमारा जो डेफिसिट है उसके लिए हमने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए 3-4 रुपये से 30 रुपये तक। उससे जो है हर चीज़ में उत्पादन में जहाँ भी उसका इनपुट होता है वो बढ़ना शुरू हुआ। रुपए चूंकि उसका दाम डॉलर के मुकाबले कम हो रहा है, जो चीज़ इंपोर्ट करते हैं वो रुपए महंगी हो जाती। तो सब मिला के जो है नीतियों से बना हुआ ये प्रेशर है। इसके पहले एक बात संतुलन की होती थी, उस संतुलन में हमारे अर्थशास्त्री इतनी बात समझ चुके थे कैसे वो संतुलन बना के रखना है। और उसकी सबसे अच्छी पहचान जो उसका बैरोमीटर है, उसे कहिए उसका जो थर्मामीटर है, वो अपने आप में महंगाई है। तो अगर हम 15% यानी कि 40 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई देख रहे हैं जो कि थोक भाव के सूचक हैं, और 10% के आसपास मान लीजिए जो खुदरा भाव के सूचक हैं, ये जो महंगाई है इससे दोहरी मार पड़ रही है। अगर मान लीजिए होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर बढ़ जाता है तो उससे चीज़ें प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है और वो फिर धीरे धीरे सब कुछ बढ़ाना शुरू कर देती है कंज्यूमर के लिए। लेकिन कंज्यूमर क्या, जो हमारे जिसकी तनख्वाह 12,000 रुपये से कम है, अगर उनका बजट देखो तो 12,000 में वो 3-4 हज़ार किराए देते हैं, शहरों में रहते हैं तो छोटे शहरों में, बड़े शहरों में 3-4 हज़ार का उनका खाना होता है, करीब 1-1.5-2 हज़ार का उनका दूध होता है, और उसके अलावा जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनके 12,000 ख़त्म हो गए, उन पर बचत नहीं होती। अगर एक दिन काम नहीं करते हैं, 2 दिन काम नहीं करते हैं, उनको मुश्किल हो जाती है। उनके पास अमेरिका में बात यह है, उनको देखिए आप जो एवरेज जो कैपेसिटी है परिवार की, जो उसके पास कैश होता है वो $1,000 से कम होता है, जबकि उनकी जो आमतौर पर औसतन जो अमेरिका में प्रति व्यक्ति आमदनी है वो $5,000 की है सालाना। उनके पास $1,000 से कम उनका हो, $5,000 महीने का है कह रहा हूँ, लेकिन उनके पास कैश 1,000 से कम रहता है। अपने अभी कितने जो परिवार जिनकी जिनकी आमदनी जो 90% परिवार हैं उनके पास 10,000 रुपये कैश नहीं रहता, तो उनके पास वो क्षमता नहीं है कि ऐसी महंगाई हो तो उसको बर्दाश्त कर सकें, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो अगर हमारे पास नौकरी नहीं है, 90% लोगों के पास, उनको हम गेहूँ दे नहीं सकते, चावल दे रहे हैं और वो भी हमारा भंडार ख़त्म हो रहा है, और महंगाई की जो आप देख रहे हैं रफ्तार उसको देखिए, तो एक तो इसमें से लोग कम खाएंगे, दूसरे धीरे धीरे असंतोष बढ़ेगा और रोजगार न होने की वजह से कई तरह की जो सामाजिक विकृतियां पैदा होंगी वो अलग है। तो ये जो 8 साल की हमारी कमाई है उस पर थोड़ा चिंता होनी चाहिए सबको, सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर अभी हम सोचते हैं तो उससे निकल सकते हैं। खाली ये सोचना होगा कि हम सिर्फ एक या दो औद्योगिक परिवारों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम वो बात मान लेते हैं तो हमारे जो अर्थशास्त्री हैं जिनको रिटायर कर दिया, अगर उनको वापस बुलाइए, सबको बैठाइए, बात कीजिए, एक कंसल्टेटिव तरीका निकालिए बातचीत का, समझने का, उसके बाद जो बात आएगी उससे हम इन सब चीज़ों से निकल सकते। तो ये जो सूचक हमारे हैं, जैसे कि डॉक्टर कहता है भाई आपको बुखार हो गया है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आपकी पल्स ठीक नहीं है, तो चलिए आपको सही दवा देते हैं। हमें दवा सही चाहिए। जो अभी जो दवा दी जा रही है वो उसका एक सूचक बहुत बढ़िया अभी हाल का है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम दुनिया का कल्याण बनना चाहते हैं। इसके पहले हम दुनिया के अध्यापक बन चुके हैं, विश्वगुरु बन चुके हैं, दुनिया को नर्स कर चुके हैं, दुनिया को ये बड़ी फार्मेसी बन चुके हैं। वो सब ये बात अलग है कि जब आप देखेंगे किताबों में आंकड़ों पर वो सभी बातें सही नहीं खड़ी होती हैं, खड़ी नहीं हो पाती। लेकिन अब हम कल्याण बनना चाहते थे, उसके बाद जो है लोग जाने शुरू हुए और फौरन बाद उस पर बैन लग गया। बैन लगने के बाद जो नेक्स्ट पॉलिसी आई कि वो कभी खोलेंगे कभी गिराएंगे, वो करते रहेंगे क्योंकि जिनके लिए सरकार काम कर रही है वैसी डिमांड करेंगे। जाहिर है कि ये मुद्दा जो है, जो 8 साल से हमारी पॉलिसीज चल रही हैं, इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, एक तरह से कुछ ऐसे कि अंधियारा सा कहीं दिखता है वहाँ पर, उन सब से निकलने की ज़रूरत है। और ऐसी नीतियाँ बनाइए कि देश में ऐसी प्रगति हो जिसमें हर नागरिक सम्मान के साथ, कुशलता के साथ, आदर के साथ वो खड़ा हो सके और अपनी जीविका जी सके वो, और साथ में चीज़ें एक संतुलन के साथ चलें। जब मैं आज चार्ट देखता हूँ, चार्ट्स में लगता है कि भारत कहाँ आगे हुआ करता था, अब वो कहीं बीच में आ गया है। बांग्लादेश भी हमसे अच्छा कर रहा है, सभी जानते हैं इन बातों को। तो इन सब चीज़ों को फिर से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था सब उसका गुणगान करते थे 2014 तक, और तब से सवाल के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। तो उस पर बैठ के सोचने की ज़रूरत है। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।